काल चक्र का रहस्य। तो राजयोग शिविर के अंतर्गत आप सभी ने अभी तक स्वयं का यथार्थ परिचय, परम सत्य की पहचान और राजयोग का आधार और विधि, इन सभी विषयों पर आपको स्पष्ट कराया गया है। तो आप सभी स्पष्ट हुए भी होंगे, लेकिन योग की सरल विधि और आधार के बारे में जानने के साथ साथ राजयोग साधना के लिए जितना हमें स्वयं का ज्ञान होना जरूरी है, उतना ही जिसके साथ हमें संबंध जोड़ना है उसके साथ संबंध जोड़ के हमें क्या प्राप्तियां होना है उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। और जितना ये आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है, उतना ही ये सृष्टि का ज्ञान होना भी जरूरी है, इस ड्रामा का ज्ञान होना भी जरूरी है कि इस सृष्टि चक्र के अंदर हमारा क्या रोल है, क्या पार्ट है, परमात्मा का क्या रोल है, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो जिसको अपनी भूमिका का, इस सृष्टि चक्र के अंदर अपना रोल का मालूम होगा स्पष्ट रूप से, उतना ही वो अपने रोल को अच्छा करने का प्रयास करेगा, कुशल बनाने में भी लगा रहेगा। और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, जिसमें ये काल चक्र का जो गुह्य रहस्य है, आत्मा को भी जान जाएंगे, परमात्मा को भी मान लेंगे, लेकिन कई है जो देखा जाता है कि इस ड्रामा की पॉइंट पर आकर के अटक जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में उलझे रहते हैं। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कई ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो हम मूझने लगते हैं, उलझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्यों क्या के क्वेश्चन में हम उलझे रहते हैं और यही क्वेश्चन, यही प्रश्न हमारे मन को दुखी करती है, हमारे जीवन को दुखी करती है। इसलिए जो आज का जो सत्र है काल चक्र का गुह्य रहस्य, इस सत्र को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको मनन करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं और आपके मन में जितने भी प्रश्न है उन सब का समाधान मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हो जाएगा अगर इस सत्र को ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे। तो इसलिए आज का जो सत्र कराने जा रही है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी गीता दीदी जी, तो सबसे पहले इस 7वें सत्र में दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं दीदी जी को अनुरोध करती हूँ कि आज का जो सत्र है काल चक्र का गुह्य रहस्य वो आरंभ करें। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है अभी का, सृष्टि चक्र। ये दुनिया क्या है, आखिर ये संसार कैसे चलता है, युगों का इतिहास क्या है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मफल भोग रहे हैं, इस दुनिया का भी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। हम देखते हैं कि वास्तविकता में संसार चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि इस दुनिया एक कल्पना है, जगत मिथ्या है। अगर जगत मिथ्या है फिर तो जगत नियंता परमात्मा भी मिथ्या हो जाए। अपने आप को जगत गुरु कहलाने वाले भी मिथ्या हो जाएंगे। तो जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। तो क्या है ये दुनिया? तो ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष का एक खेल है। प्रकृति और पुरुष माना हम ये समझते रहे कि ये स्त्री और पुरुष का खेल है, लेकिन पहले ही लेसन में हमने समझ लिया है कि स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, माना वो तो प्रकृति के ही रूप है। चाहे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, प्रकृति के पांच तत्वों की ही रचना है। इसलिए ये जो प्रकृति और पुरुष का खेल जो कहा है, उसमें प्रकृति माना पांच तत्व और पुरुष माना चैतन्य शक्ति, तो ये सृष्टि का खेल प्रकृति के पांच तत्व और चैतन्य शक्ति आत्मा का बना हुआ खेल है। प्रकृति ने तो हमें पांच तत्व दिए, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, लेकिन मनुष्य आत्मा ने इन पांच तत्व में से अनेकानेक चीजें बनाई। एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी जायंट बिल्डिंग्स, साधन, यंत्र, मशीन, ये जितने भी चीजें, वैभव, पदार्थ, वस्तुएं, साधन हैं, जो इन आंखों से हम देख रहे हैं, वो प्रकृति के ही पांच तत्वों से बने हुए हैं। तो प्रकृति कैसे कार्य करती है, पुरुष चैतन्य शक्ति आत्मा कैसे कार्य करती है, इस पर हम देखेंगे। तो प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती है। इसलिए प्रकृति के ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी, भल वैज्ञानिकों ने प्रयास किए इसकी उत्पत्ति को जानने के लिए, जो भी भूस्तर शास्त्री हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी लंबी खोज के बाद यही विचार सबके सामने रखे, क्योंकि वे फाइनल फैक्ट एंड फिगर्स को प्राप्त नहीं कर पाए। एक अंदाजा लगा के बताया गया कि लगभग करीब अबाउट इतने अरब वर्ष पूर्व सूर्य निहारिका से अलग हुआ, इतने अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ठंडी हुई, फिर उसका फर्स्ट लेयर बना, सेकेंड लेयर बना, थर्ड लेयर बना। तो वैज्ञानिकों ने भी अब तक हमें अबाउट, करीब, अंदाजा की ही बातें कही है, उसका कोई फाइनल फैक्ट आंसर हमें नहीं दिया है। इसलिए परमात्मा ने आकर के इस संसार चक्र के बारे में जो ज्ञान दिया है, वो मैं आपके सामने रखती हूं कि प्रकृति अनादि और अविनाशी है, न उसकी उत्पत्ति है न विनाश है, ये अनादि अविनाशी रूप से हैं। और इस प्रकार पुरुष चैतन्य शक्ति आत्मा भी अनादि और अविनाशी है। गीता में भी इसलिए स्पष्ट लिखा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जिनको शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, आत्मा ऐसी अनादि अविनाशी अजर अमर अविभाज्य चैतन्य शक्ति है। अंडरस्टूड है कि अविनाशी प्रकृति और अविनाशी आत्म शक्ति से बना हुआ ये संसार का खेल भी अनादि और अविनाशी है। इसलिए ये संसार चक्र चलता ही रहता है। आप रोज की दिनचर्या में देखिए, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक कितनी चीजों का उपयोग हम करते हैं। अगर आप लिस्ट बनाएं, पानी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, बाल्टी, मगा, नलके, पता नहीं, आप लिस्ट बनाएं, सारा दिन हम कितनी चीजों का उपयोग करते हैं। ये चीजें प्रकृति से बने, पर इन चीजों का उपयोग कौन करता है? चैतन्य शक्ति। टेलीफोन है, पर उसका उपयोग तब होता है जब मुझे संकल्प आता है कि मुझे फोन करना है। चीज है, पर मुझे इच्छा होती है कि मुझे खाना है, तो मैं उठाकर लेती हूं और खाती हूं। मशीन है, मैं ऑपरेट करती हूं, कर्म शक्ति। तो इन भौतिक साधनों का उपयोग चैतन्य शक्ति करती है। तो हमारे रोज की दिनचर्या से भी हमें स्पष्ट होता है कि एक है पदार्थ और दूसरी है शक्ति। दोनों से ही जीवन कार्य चलता है। तो ये सृष्टि खेल भी अनादि अविनाशी है। अब इसमें प्रकृति कैसे अपना कार्य करती है? संसार में तीन कार्य चलते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। परमात्मा को गॉड शब्द जो कहते हैं, अगर उसका भी हम एक एक अक्षर का अर्थ करें तो जी ओ डी, जी मीन्स जनरेशन, उत्पत्ति, स्थापना, ओ मीन्स ऑपरेशन, चलाना, पालना करना, एंड डी मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश का कार्य। परमात्मा वो परम शक्ति है जो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करवाते हैं। अब वो कैसे होता है? प्रकृति के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का कार्य कैसे होता है? तो जैसे जमीन में बीज गिरते हैं, स्थापना का कार्य हुआ। विज्ञान में हम पढ़ते रहे हैं कि कैसे पुष्प के पराग रज भी, उसके फल के बीज भी हवा के साथ उड़ के कैसे जाते हैं, जमीन पर गिरते हैं। स्थापना का कार्य हुआ और वो बीज अंकुरित होकर पनपता है, पौधा पेड़ बनता है, प्रकृति के तत्वों से ही उसकी पालना होती। और हम देखते हैं कि वही प्रकृति जब विनाशक बनती है तो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फेमन, साइक्लोन्स के द्वारा विनाश का भी वो कार्य करते हैं। तो ये है प्रकृति के द्वारा स्थापना, विनाश, पालना का कार्य। अब ये कार्य प्रकृति स्वयं अपनी शक्ति से करती है, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। विज्ञान के विकास के पहले ये अंधश्रद्धा समाज में थी कि सूर्य भी भगवान चमकाते हैं, चंद्र भी भगवान चमकाते हैं, इसलिए सूर्य भगवान, चंद्र देवता कहते, बिजली भी भगवान चमकाते हैं। और इतने तक ये मान्यता रही कि भगवान की इच्छा के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन वास्तव में परमात्मा तो कल्याणकारी है, करुणा, दया, रहम के सागर है, प्यार का सागर है। तो ऐसे कल्याणकारी, दयालु, कृपालु परमात्मा विनाश का कार्य प्रकृति के द्वारा कैसे कराएंगे? विज्ञान के विकास के बाद, क्योंकि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रकोप हुआ। परमात्मा कभी कोपायमान नहीं होते। भगवान भी गुस्से हो, नाराज हो, तो उनको भगवान कौन कहेगा? एक अच्छा सेंसिबल, ज्ञानी, योगी व्यक्ति भी गुस्सा नहीं करता है, नाराज नहीं होता है। परमात्मा कृपायमान नहीं होते। ये नेचुरल कैलेमिटीज है, गॉडली कैलेमिटीज नहीं। इसलिए विज्ञान के विकास के बाद हम सबको स्पष्ट है कि बिजली कैसे होती है, बरसात कैसे बरसती है, सूर्य कैसे रोशनी देता है, हवा कैसे चलती है। विज्ञान ने हमें ये बातें स्पष्ट कर दी। इसलिए प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो ईश्वर प्रेरित नहीं है। प्रकृति अपनी शक्ति से स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करती है। इस प्रकार दूसरी जो है वो है मनुष्यात्मा, चैतन्य शक्ति के द्वारा हम मनुष्यात्माएं जो भी कार्य करते हैं वो भी स्वयं के ही संस्कारों से प्रेरित होकर करते हैं। मनुष्यात्माएं कैसे स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करते हैं? तो हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, मकान के नक्शे बनाते हैं। ये प्लानिंग करना, आइडियाज, थॉट, ये स्थापना का कार्य है। अभी इस हॉल में हम बैठे हैं, इनको बने हुए 15 साल हुए। आज से 15 साल, 16 साल पहले ये हॉल कहां था? कहां था? किसी के माइंड में था, थॉट में था, एक आइडिया के रूप में था। कुछ दिन, मास के बाद वो एक नक्शे के रूप में था और फिर आज ये एक भवन के रूप में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा विश्व मानव मन की रचना है। जितनी भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं, मकान, रास्ते, दुकान, साधन, ये व्यक्ति के मन की रचना है। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति, थॉट पावर को कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध मैदान में होने से पहले मानव के मन में उत्पन्न होते हैं, मन में वैर वैमनस्य अनबन द्वेष उत्पन्न होता है, फिर प्रैक्टिकल में आपस में लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं। इसलिए क्यों मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है, क्योंकि संसार की सभी चीजें, वस्तुएं, व्यवस्थाएं मानव मन की रचना है। आपके पास जमीन है, पैसे हैं, साधन है, पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आइडिया, थॉट चाहिए। इसलिए ये सबसे बड़ा एसेट है, हमारी सबसे वैल्यूएबल एसेट विचार संपत्ति है। और इसको कितना हम वेस्ट करते हैं, पैसे फालतू खर्च न करें, चीजें खराब न हो जाए, ये ध्यान हम देते हैं, पर मन खराब न हो, विचार वेस्ट न हो, इस पर हम ध्यान देते हैं? हमें बचपन से ये जरूर सिखाया गया कि ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं उठना है, पर ऐसा नहीं सोचना है। मन के प्रति हम अटेंटिव नहीं है, जबकि वो मोस्ट वैल्यूएबल हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये प्लानिंग करना, आइडियाज बनाना, थॉट आना, ये स्थापना का कार्य है। प्रैक्टिकल में वो मकान प्रोजेक्ट हम करते हैं, उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो पालना का कार्य। और वही मनुष्य आत्मा जब तमो प्रधान बन जाता है तो लड़ाई झगड़ा मारामारी युद्ध के द्वारा विनाश का भी कार्य करता है। तो ये है मनुष्य आत्मा के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य। अब मनुष्य आत्मा जो कार्य करती है वो स्वयं के संस्कारों के वश करती है, संस्कारों की प्रबलता अनुसार करती। जब हमारे में अच्छे संस्कारों की प्रबलता है तो हम अच्छे कार्य करते हैं, जब बुरे संस्कार हमारे में पावरफुल है तो उनके वश, परवश होकर, बाध्य होकर हम बुरे कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा संस्कार के वश कर्म करती है। ऐसे नहीं है, क्योंकि कई लोगों की ये मान्यता रही है कि मनुष्य आत्मा जो कुछ कर्म करती है भगवान की इच्छा से करती है। जैसे कई भाई बहनों को हम निमंत्रण देते हैं, अच्छा, जैसे कई बार हमें मन में बुरे विचार आते, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, इसको मार दूं, ऐसे कई बुरे विचार आते, फिर हमें अंदर से होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो नहीं करना चाहिए विचार आता है, उसके लिए लोग समझते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान हमें पाप न करने की प्रेरणा देता है। लेकिन आप थोड़ा गहराई से सोचिए कि जीवन में कई बार गलत, बुरा, पाप न करने की प्रेरणा हमें आती है, हम उसको दबाकर भी कई बार गलत कर्म कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? क्या ईश्वर की प्रेरणा ही वो है तो वो इतनी कमजोर है क्या जो हम उसको दबाकर पाप कर लेते? और फिर ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा का क्या अर्थ है? तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि इंसान बुरा ही सोचता है, अच्छे विचार आते हैं वो भगवान देते हैं, ऐसे नहीं। अगर हम बुरा ही सोचते तो बुरा ही करते तो दुख ही पाते ना। पर जीवन में हम सुख भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं, मीन्स हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। लेकिन जब अच्छे संस्कारों की प्रबलता है तो कितने भी बुरे वातावरण लोगों के बीच भी हम अच्छा ही करते। और जब हमारे में बुरे संस्कार शक्तिशाली है तो हम बुरे कर्म कर लेते हैं। तो मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है वो खुद के संस्कारों की प्रबलता अनुसार करती है। मनुष्य आत्माओं के विचार, वाणी, कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म व्यवहार का प्रभाव प्रकृति, पशु, पंछी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति रचना है, वो इंसान को फॉलो करते हैं। इसलिए ये गाया हुआ है कि जब राम राज्य था, मनुष्य देवता थे, तो शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। माना जब मनुष्य सात्विक थे तो प्रकृति, पशु, पंछी जगत भी सात्विक थे। द्वापर युग के ऋषि मुनियों का भी हम महिमा सुनते हैं कि जब वे जंगलों में तपस्या करते थे, उनके आश्रम के वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी होती थी, तपस्या के इतने शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैले हुए होते थे जो जंगल के हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। माना पवित्र श्रेष्ठ विचार तपस्या के प्रभाव से पशुओं की हिंसा वृत्ति का शमन हो जाता। हम पढ़ते थे, हमें एक काव्य आता था जिस काव्य में बताया गया था कि जैसी मानव की वृत्ति होती है ऐसी प्रकृति की स्थिति बनती है। कि एक राजा था, बहुत ही अच्छा था, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, प्रकृति भी बहुत ही फलदायक भरपूर थी। एक बार राजा साधारण वेश में अपने राज्य नगर चर्चा करने निकलता है और एक बूढ़ी माता के गन्ने के खेत में जाता है। गन्ने की खेती बहुत ही सुंदर हुई थी, और वो माता ने गन्ना काट कर ग्लास भर कर गन्ने का रस उसको पीने के लिए दिया। वो रस बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा था। राजा बहुत खुश हुआ कि कितनी सुंदर खेती है। और जाते जाते उसको फिर रास्ते में विचार आता है कि ऐसी अच्छी खेती पर तो टैक्स लगाना चाहिए। और वो टैक्स लगाता है और उस प्रकार की उनकी वृत्ति बन जाती है प्रजा से लेने की। दोबारा जब वर्षों के बाद वो माता के खेत में आता है, फिर गन्ने का रस मांगता है, वो माता गन्ना काटती है पर वो सूखा हुआ इतना रस नहीं निकलता है। तो राजा पूछता है, क्या बात है तुम्हारा, ऐसा कैसा गन्ना हो गया है, रस इतना निकला नहीं? तो वो माता कहती है, दया हीन हुआ नृप, रसहीन हुई धरा। राजा दयाहीन हो गया इसलिए ये धरा भी रसहीन हो गई। माना हमारी वृत्ति प्रवृत्ति, वाणी कर्म व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। इसलिए विज्ञान में भी ये सिद्ध है कि जब हम अपनी खेती फसल बाग बगीचे को बहुत शुभ भावना प्यार और अच्छे सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो उससे बहुत अच्छा पौधे का फसल का विकास होता है। ये विज्ञान सिद्ध हकीकत है। और इस विश्वविद्यालय के ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट विंग ने भी इस बात का बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रमाणित हुआ है। योगिक खेती, कि अगर आप अपने खेत में फसलों के बीच बैठकर योग करते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते हैं, शुभ सोचते हैं तो बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। यूरी गैलर जो एक साइकिक था, जिसके पास साइकिक पावर संकल्प शक्ति का वो पदार्थ पर प्रयोग करता था, वो संकल्प से ही चम्मच बेंड कर देता था, चाबियां बेंड कर देता है, चलती हुई घड़ियां स्टॉप कर देता है और अपने हाथ में बीज थॉट पावर से उगाता है। तो ये भी एक साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे थॉट पावर, विचारों का, वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे देश में हमारे अध्यात्म के जो भी धर्म के शास्त्र है उसमें भी बताया गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का मन पर प्रभाव और मन के विचारों का अन्न पर प्रभाव। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी के प्रभाव में आता है, उसी की महिमा करता है, उसी के गुणगान के गीत गाता है, तो अक्सर हम कहते हैं कि भाई किसका खा के आया है, उसी के गीत गा रहा है, इसको कुछ खिला दिया है, पिला दिया है। तो हमारे भोजन बनाते समय हमारे विचारों का अन्न पर और अन्न द्वारा अन्न खाने वाले के मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर का, माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन और एक होटल के अंदर धंधे के हिसाब से बनाया हुआ भोजन, दोनों में अंतर है। एक रोज का भोजन और एक मंदिर का प्रसाद, क्यों अंतर है? क्योंकि थॉट्स। इसलिए हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। और इसलिए मनुष्य आत्माएं जब पतित बन जाती है तो प्रकृति पशु पंछी जगत भी पतित तमु प्रधान बन जाते हैं। जब हम अपने जीवन के नियम संयम तोड़ते हैं तो प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहती है। इसलिए आज प्रकृति उपद्रवी बन गई है, वरना प्रकृति सदा सुखदाई रही, वो हमें देती रही है आज तक, लेकिन हमने अपने स्वार्थ से जब से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति का दोहन किया है, एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हुआ और उसके कारण आज कितने डिजास्टर्स, कितनी प्राकृतिक आपदाएं संसार में आने लगी है। और इस प्रकार जब पुरुष और प्रकृति दोनों पतित बन जाते हैं तो परमात्मा कैसे सृष्टि पर आते हैं और वे आकर हम मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं और हम मनुष्य आत्माओं की पवित्रता की शक्ति से प्रकृति भी फिर पवित्र बनती है। इसलिए परमात्मा का कार्य ये है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों पतित बन जाते हैं और ये संसार खेल पतित तमो प्रधान बन जाता है, तब वे सृष्टि पर अवतरित होते हैं। हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी है। वे हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, पाप कर्म किसे कहते हैं, वे कर्म का ज्ञान देते, योग सिखाते हैं, ताकि योग से आत्मा में विल पावर आता है, जो गलत है वो नहीं ही करें, जो सही है वो ही करें। ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हमें मेडिटेशन से प्राप्त होता है। हम पवित्र बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, तो हमारे कर्म वाइब्रेशन के प्रभाव से प्रकृति में भी पूर्ण परिवर्तन आता है और वे पांच तत्व पशु पंछी भी सात्विक बनते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल अनादि और अविनाशी। जैसे आप प्रकृति जगत के छोटे छोटे और साइकल्स को देखिए, वो अनादि अविनाशी है, वो साइकल्स चलते ही रहते हैं, जैसे रात और दिन का चक्र, ये अविनाशी है। कितना भी कोई करे, रात को कोई थमा सकता है? दिन को आने को कोई रोक सकता है? नहीं। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये अनादि अविनाशी साइकिल है। इस प्रकार आप देखिए सीजन्स का साइकिल, सर्दी होती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा होती है, फिर ठंडी आती है, ये सीजन्स का साइकिल है जो चलता ही रहता है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल, हम शरीर धारण करते हैं, जन्म हुआ से कहते आत्मा तो अनादि अविनाशी है, आत्मा का जन्म, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, पर आत्मा शरीर धारण करती है उसे जन्म कहते, आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे मृत्यु कहा जाता है। तो हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। तो ये लाइफ एंड डेथ का साइकिल है जो चलता ही रहता है। सप्ताह का साइकिल आप देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप देखिए पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती ही रहती है, पृथ्वी अपनी धुरा के आसपास घूमती ही रहती है, चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता ही रहता है। तो जैसे प्रकृति जगत के ये छोटे छोटे साइकल्स है जो अनादि काल से अविरत रूप से चलते ही रहते हैं, सेम होल वर्ल्ड साइकल, ये संसार चक्र भी अनादि और अविनाशी है, वो भी चलता ही रहता है। जैसे हर साइकल की अपना टाइम पीरियड है, हर एक की अपनी समयावधि है, डे एंड नाइट का साइकल 24 घंटे का है, 24 घंटे का ये साइकल है, सप्ताह का साइकल 7 दिन का साइकल है, महीनों का साइकल वो भी 12 मास का, फिर से वापस जनवरी फरवरी आता है। तो जैसे हर चक्र का अपना टाइम लिमिट है, ये संसार चक्र 5000 वर्ष का है। हर 5000 वर्ष के बाद फिर ये साइकल रिपीट होता है। जैसे और साइकल्स रिपीट होते ही रहते हैं, हम कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास अपने आप पुनरावृत्त होता है, तो ये होल वर्ल्ड साइकल भी हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसलिए ये बातें हमें और धर्मशास्त्रों में भी मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, जो बना हुआ है वही बन रहा है, नया कुछ बनना नहीं। इसलिए कहा जाता है नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, जो हुआ है वही फिर से हो रहा है। इसलिए ये संसार चक्र पूर्व निश्चित है, इसलिए ही वो पुनरावृत्त होता है। जैसे फिल्म बनाते हैं तो पहले स्टोरी फिक्स करते हैं ना, स्टोरी बनती है फिर फिल्म बनती है, और वो फिल्म शो फिर हर 3 घंटे के बाद रिपीट होता ही रहता है। इस प्रकार ये वर्ल्ड ड्रामा भी पूर्व निश्चित है, इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट निश्चित है, हर घटना निश्चित है, और इसलिए हम कहते हैं भी चलो भाई होना था सो हो गया। देखो ज्योतिष शास्त्र से भी ये बात प्रमाणित होती है, ज्योतिष लोग हमारी रेखाएं देखकर हमारा भविष्य बताते हैं। जरूर वो घटनाएं पूर्व निश्चित है तब तो वो बता सकते, अगर वो पूर्व निश्चित ही ना हो तो ज्योतिष शास्त्र ही नहीं हो सकता। पर वो मनुष्य ज्योतिष है, हद का ज्ञान है, हद की बातें बताते हैं। परमात्मा बेहद का ज्योतिष है, ज्ञान का सागर है, इसलिए वो सारे विश्व चक्र का बताता है कि पूरा वर्ल्ड ड्रामा ही पूर्व निश्चित है। जब हर आत्मा का भाग्य जीवन पूर्व निश्चित है, हर घटना पूर्व निश्चित है, अंडरस्टूड है, द होल वर्ल्ड ड्रामा पूरा साइकिल पूर्व निश्चित है। पर क्या निश्चित है हम नहीं जानते, इसलिए कहते ना कि कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, हमें नहीं पता है। इसलिए हमारा कार्य है कि हम अपना हर कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें। जैसे आप बिजनेस करते हैं, आप अपनी अच्छे से अच्छी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जो कमाई होती है तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमने अपनी पूरी मेहनत की है, बाकी जो नसीब में था वो मिला, कहते हैं कि नहीं? पता है नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, फिर भी आप बैठे रहते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, अपनी अच्छे से अच्छी मेहनत करते हैं। तो ये वर्ल्ड ड्रामा में हमारा पार्ट क्या है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है, हमें पता नहीं है। इसलिए हमारा कार्य है वर्तमान के हर क्षण हर कर्म को अच्छे से अच्छे रीति करना, पुरुषार्थ करने समय कर्म, कर्म जब हम करें तो पूरा पुरुषार्थ करें, कर्म के फल पर, कर्म का परिणाम जब आता है तो हम कहें कि चलो भाई प्रारब्ध नसीब में था वो हमें मिला, ताकि हमारे विचार व्यर्थ न चले कि हमने इतना मेहनत किया हमें क्यों नहीं मिला। क्योंकि गीता में जैसे कहा है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हम प्रेजेंट में कर्म कर सकते, कर्म के फल पर अधिकार नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ वर्तमान के कर्म पर आधारित नहीं होता है, वो हमारे आगे पीछे जन्मों के माइनस प्लस कर्मों के खाते के टोटल हिसाब के रिजल्ट में रिजल्ट आता है। इसलिए कहा जाता है कि भी कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, पर कर्म के परिणाम पर, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा उसमें तो हमारे आगे पीछे अनेक जन्मों के कर्मों के माइनस प्लस के खातों का हिसाब आएगा ना। जैसे बैंक में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना, वे कितनी बार आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, वो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। ऐसे जन्म बाय जन्म जो कर्म हम करते हैं उनके माइनस प्लस का कैरी फॉरवर्ड क्या है हमें तो नहीं पता है ना। हमारे हाथ में वर्तमान का क्षण है, इसलिए अभी के कर्म हम श्रेष्ठ करें, उत्तम पुरुषार्थी बने, बाकी जो रिजल्ट आता है वो शांति से हम स्वीकार कर सकें, उसके लिए सोचे कि चलो भाई जो होना था वो हुआ। तो ये जो संसार चक्र है, 5000 वर्ष का जो ये साइकिल है, वो चार स्टेज से गुजरता है, जिसको चार युग कहा जाता है। चित्र में स्वस्तिक दिखाया है, स्वस्तिक चिन्ह तो देखा है ना, हर शुभ कार्य में स्वस्तिक निकालते हैं, नेपाल में निकालते हैं, है ना, अपन कोई उद्घाटन करते हैं, दुकान है, अकाउंट्स का रजिस्टर है, तो पहले हम क्या निकालते, स्वस्तिक निकालते। पर हमें पता नहीं है कि ये चिन्ह हम क्यों निकालते, भाई ये एक रिवाज है, ब्राह्मण निकालते हैं, पंडित निकालते हैं, इसलिए हम निकालते हैं, पर ये किस बात का प्रतीक है? तो स्वस्तिक स्वस्थिति का यादगार है, कि जैसे हमारी आत्मा स्थिति बदलती है ऐसे संसार की स्थिति बदलती है। आत्मा स्थिति बदलती है ऐसे युग बदलते हैं। तो ये संसार चक्र चार स्थिति से गुजरता है। जैसे लाइफ के अंदर भी बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये चार अवस्थाएं। बचपन एक सतो प्रधान स्थिति, प्योर स्टेज। फिर जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस के लेयर्स आत्मा पर चढ़ने लगते। युवा अवस्था एक एनर्जेटिक स्टेज, और फिर ढलने लगता है। फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध और समाप्त, फिर नया जीवन शुरू। मौसम में भी आप देखिए, स्प्रिंग, बसंत, बहार, पूरी प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। पर सदा बसंत रहती है? नहीं। फिर धीरे धीरे गर्मी, फिर सर्दी और आखिर पतझड़। पूरा क्या हो जाता है, और फिर उस पतझड़ से वापस बसंत आती है। तो ये प्रकृति में भी आप देखिए कि ये स्टेजेस है। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, उसमें चार स्टेजेस, चार युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों की आयु एक सरीखी है, 1250 वर्ष। टोटल साइकिल 5000 वर्ष का। इसलिए भक्ति में हम स्वस्तिक के चार सरीखे भाग करते हैं, और वो चार भाग में बिंदु करते करते डॉट लगाते कि चारों ही युग में आत्मा की स्थिति क्या है। आत्मा की स्थिति के आधार पर युग परिवर्तन होता है। जब हम आत्माएं सत्य स्थिति में हैं, पूर्ण शुद्ध, संपूर्ण निर्विकारी, दिव्य गुणों से संपन्न देवताई स्थिति में है, तो उसे सतयुग कहा जाता है। और हर धर्म में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ये संसार, ये मानव जाति, ये सृष्टि आदिम काल में स्वर्गीय सृष्टि रही है, देवताई सृष्टि रही है। इसे ही हिंदू स्वर्ग, वैकुंठ कहते हैं। क्रिश्चियन उसे हेवन, पैराडाइज कहते हैं। मुस्लिम्स उसे जन्नत, बहिष्ट कहते हैं। कोई उसे सचखंड कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, कि भगवान ने हर इंसान को अपने जैसा बनाया। माने देवताई लक्षण थे, तो संसार स्वर्ग था, पूर्ण सुख था, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, उसे सतयुग कहा जाता है। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है। गीता सार में क्या बताते हैं? परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से नई बनती है। इस प्रकार हर आत्मा सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो तमो स्थिति से प्राप्त होती है। तमो से फिर वापस सतो प्रधान बनाई जाती। तो जब आत्मा सतो प्रधान थी, सत्य थी, सत्व प्रधान थी, तो संसार प्रकृति भी सत्व, रस और कस से भरपूर था। आज लोग हैं पर उसमें कोई तेज ओजस नूर नहीं, चीजें हैं हाइब्रिड बड़ी बड़ी पर उसमें कोई रसकस नहीं। इसलिए 1250 वर्ष के बाद हमारी वो सतो प्रधान स्टेज में, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, हर जन्म बाय जन्म आत्मा प्रकृति और समय के संसर्ग में आकर अपनी शक्ति गंवाती है। ये एक वैज्ञानिक लॉ है, हर परिवर्तन में शक्ति खर्च होती, इसलिए 2% डाउन होते हैं, उसे त्रेता युग कहा जाता है। आत्मा जब सतो सामान्य स्थिति में आती है तो उसे त्रेता युग रामराज्य कहा जाता है। वहां सुख है, शांति है, पवित्रता है, लेकिन सतयुग स्वर्ग है तो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। कोई चीज बिल्कुल नहीं, उनकी चमक अपनी है, और 5 दिन 10 दिन भी यूज करो तो उनकी चमक में फर्क पड़ जाता है ना। अच्छी ही है चीज, टूटी नहीं है, फूटी नहीं है, खराब नहीं हुई है, अच्छी ही है, पर उसकी चमक रौनक न्यूनेस में अंतर आ जाता है। तो सतयुग और त्रेता युग दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में सुख शांति और पवित्रता होती है। इसलिए आप देखिए सतयुग के बाद स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से डाउन जाता है, माना हम वहां राइटियस ही है पर राइटियसनेस में थोड़ा परसेंटेज डाउन जाते हैं। और द्वापर युग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, जो अशुभ की निशानी। राइट साइड जो बताया है, राइट साइड को शुभ मानते हैं ना, ये शुभ की निशानी बताए। द्वापर युग से हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, सतयुग और त्रेता युग में हम नेचुरल सोल कॉन्शियस, इसलिए हमारे कर्म राइटियस, प्रकृति भी राइटियस, पर शरीर धारण कर पार्ट बजाते 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 फिर हम आत्मा विस्मृत हो जाते, देहभान में आ जाते द्वापर युग की शुरुआत के। इसलिए कहा जाता है कि द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग में जाते, उल्टे मार्ग, विकारों के मार्ग पर जाते। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे कई मंदिरों में, जगन्नाथ के पुरी के मंदिर में आपने देखा होगा कि उसमें देवताओं के वाम मार्ग के चित्र बताए, माना उल्टे कर्म करते दिखाते। सतयुग त्रेता में जब देवता थे तो उल्टे कर्म नहीं थे, द्वापर युग से वही देवताई आत्माएं उतरती कला को प्राप्त होती है और पतन की शुरुआत होती है। इसलिए सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज, द्वापर को कॉपर एज कहते हैं। द्वापर से अनेक मत शुरू होते, द्वैत मत शुरू होता है। और कलयुग में स्वस्ति का हाथ देखिए लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है, अर्थात अति तमो प्रधानता की अति हो जाती, गिरावट की अति हो जाती। इसलिए कलयुग वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, विकार, बुराई, समस्या, व्यसन, फैशन, दुख, अशांति की अति होती जा रही। इसलिए वर्तमान समय को हम क्या कहते हैं, घोर कलयुग। संसार रौरव नर्क बन गए, इंसान हैवान से भी बदतर हो गए कहते हैं। इसलिए कलयुग आयरन एज अति धर्म ग्लानी का ये समय, इसलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल, घड़ी के दो कांटे बताए हैं संगम युग के रूप में, कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संधि काल संगम युग है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हम पतित मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और राजयोग सिखलाते हैं, हमें पवित्र और योगी बनाते हैं। इसलिए अभी जो समय चल रहा है कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संधि काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय, वर्ल्ड साइकिल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान सृष्टि पर आते और वे आकर हमें सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से पतित से पावन बनाते, हम पवित्र योगी बनकर फिर सतयुग के लायक देवी देवता बनते, क्योंकि साइक्लिकल ऑर्डर के अनुसार कलयुग के बाद वापस कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। घोर अंधेरी रात कितनी भी हो, वापस सुबह सवेरा उजाला होता ही, बूढ़ा जर्जरी भूत जीवन समाप्त होके एक सतो प्रधान बचपन जीवन शुरू होता है। इस प्रकार कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है। तो सोचने की बात है कि कलयुग के बिल्कुल पतित मनुष्य आत्माएं अचानक सतयुग के लायक देवता कैसे बन जाएं? जरूर दो युग के संधि काल में वो परम शक्ति परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, वे आकर हमें पतित से पावन बनाते। इसलिए ये परमात्मा अवतरण का समय है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, ये समय है परमात्मा ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय। जैसे खेती में, कृषि में सीजन आती है ना, सीजन में बीज बोने से उनका अनेक गुना अच्छा फल हम प्राप्त करते हैं ना? सीजन के फल का रस अपना ही होता है, भल वो फल 12 मास मिलेगा लेकिन सीजन के फल का स्वाद रस सत्व अपना ही होता है ना। ये समय है परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की, ताकि उसका अनेक गुना फल सतयुग और त्रेता युग में हम प्राप्त कर सकते। पूरे साइकिल की प्रारब्ध बनाने का समय है, क्योंकि परमात्मा और कोई युग में नहीं आते। अब तक हम ये मानते रहे कि भगवान युगे युगे आते, अगर हर युग के अंत में परमात्मा आता तो कलयुग क्यों होता? अगर हर युग के अंत में परमात्मा आते फिर तो उनको अच्छा बना देते ना संसार को। हर युग में आता तो कलयुग क्यों आया? परमात्मा ने आकर फिर क्या किया, फायदा क्या हुआ? इसलिए हर युग में परमात्मा नहीं आते, केवल कलयुग के अंत संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। इसलिए अभी ही पावन बन सकते। परमात्मा से ऊपर और कोई ऐसी शक्तिशाली आत्मा नहीं है जो और युग में हमें पावन बना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नाउ और नेवर, अभी ही पावन बन सकते, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि परमात्मा एक ही बार आते हैं और हमें अपने जैसा ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। परमात्मा आकर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लाते। अब तक द्वापर युग से अनेक धर्मात्मा महात्मा, अनेक समाज सुधारक, वैज्ञानिक नेताएं सब हुए, अल्प समय के लिए अल्प समाज में परिवर्तन किया, लेकिन वापस रिजल्ट तो हम देखते हैं कलयुग ही बढ़ता गया। इसलिए अंत में परम शक्ति परमात्मा आते हैं और वो आकर टोटल चेंज करते। तो ये समय है आमूल परिवर्तन का, टोटल चेंज का। तो ये है सृष्टि चक्र का वंडरफुल खेल। अगर हम इसकी एक फिल्म के साथ तुलना करें, ड्रामा के साथ तुलना करें, तो ये सृष्टि एक रंगमंच है। सूर्य चांद सितारे इस मांडवे की रोशनी है। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस है। इतनी वैरायटी ड्रेस है जो एक न मिले दूसरे से। देखो एक दो को, हरेक का शकल भी अलग है और हरेक की अकल भी अलग अलग है। इसलिए कहते हैं एक ना मिले दूसरे से, इतना वैरायटी ये ड्रामा है। विज्ञान तो इतने तक बताता है कि एक की फिंगरप्रिंट भी दूसरे से नहीं मिलती। एक एक बाल अलग अलग है। तो ये शरीर रूपी ड्रेस धारण कर हम आत्मा एक्टर वैरायटी पार्ट प्ले करते हैं। सुबह से लेकर रात तक कितने वैरायटी रोल आप प्ले करते। अभी अभी आप मां के रूप में हैं, अभी अभी आप यहाँ बच्ची के रूप में हैं, अभी अभी आप पत्नी के रूप में हैं, अभी अभी आप एक टीचर के रूप में हैं, डॉक्टर के रूप में हैं। कितने वैरायटी रोल हम प्ले करते हैं। पर पार्ट प्ले करते करते हम अपनी ओरिजिनल मूल आइडेंटिटी को भूल गए और जो पार्ट प्ले करने लगे वही अपने को मानने लगे। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम आत्मा हैं, भगवान के बच्चे हैं, पर जो हमने वैरायटी रोल प्ले किए तो हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए और जो रोल मिला हम खुद को ही वो समझने लगे। ये है सबसे बड़ी भूल। आज फिल्म में कोई एक्टर राजा बनता है और वास्तविक जीवन में घर में जाकर भी कहे कि मैं राजा हूं तो चलेगा? हाँ, लोग कहेंगे भाई जाओ जाओ, तुम अपने फिल्म में राजा होगा या घर में नहीं। हाँ, कहते ना रामलीला होती है, देखी होगी ना आपने। तो एक रामू साइकिल वाला था जो रामलीला में हनुमान का पार्ट प्ले कर रहा था। एक दृश्य में रावण ने आके जोर से पांव ठोक के कहा तुम कौन है, वो घबरा गया और भूल गया कि मैं हनुमान का पार्ट प्ले कर रहा हूं, कहते मैं रामू साइकिल वाला। हमने क्या किया, हमने अपनी रियल आइडेंटिटी भुला दी। मैं डॉक्टर हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं बनिया हूं। हम जो पार्ट मिला उसके कॉन्शियस हो गए। परमात्मा आकर के हमें याद कराते, जैसे ड्रामा में लास्ट में डायरेक्टर आकर हर एक्टर का पात्र परिचय कराते हैं ना कि भाई जो राजा बना था वो ये है, रानी बनी थी वो ये है, मंत्री बना था वो फलाना व्यक्ति। परमात्मा जो इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर है, हम कहते हैं ना वो बिगड़ी को बनाने वाला है ना? जब बिगड़ जाता है तो फिर से बनाने वाला, सही करने वाला परमात्मा है। इसलिए उनको डायरेक्टर कहते हैं कि वो आकर हमें डायरेक्ट करते हैं एक्शन कैसे करने चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए। वे हमें परिचय देते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा पार्ट है, मैं मां हूं, सास हूं, बहू, ये सब तुम्हारा पार्ट है, तुम वास्तव में आत्मा। दूसरी भूल हमने क्या की, हर एक एक्टर का काम क्या है, अपना रोल बेस्ट रीति प्ले करना। दूसरे एक्टर सही पार्ट प्ले करते हैं नहीं करते हैं वो देखने का काम किसका है, डायरेक्टर का है, एक्टर का नहीं है। हर एक्टर का काम है अपना पार्ट अच्छी रीति प्ले करना। दूसरे एक्टर सही करते हैं गलत करते हैं देखने का काम डायरेक्टर का है। हमने क्या किया, अपने पार्ट पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरे के कर्म को देखते हैं कि ये ठीक नहीं है, इनके घर में ऐसा है, इनका बेटा ऐसा है, इनकी बहू ऐसी है। हम दूसरों के कर्मों पर ध्यान देने लगे, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, जो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देगा, अपने रोल को बेस्ट प्ले करने पर ध्यान नहीं देगा, उनका अपना रोल बिगड़ जाएगा ना? मान लो तीन डांसर है, उसमें एक डांसर अपने ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी के ताल पर ध्यान देती है कि इनका ताल मिल रहा है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा, उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा ना? हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? हमारा अपने कर्मों पर ध्यान दे, हमारा दूसरों के कर्मों पर ध्यान है कौन कैसा है, इसलिए हमारा चिंतन, हमारी चर्चा का विषय वही है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसे करता है वो कैसे करता है, बस दिन रात वही हम सोच रहे हैं। हमारा अपने कर्मों पर ध्यान नहीं है, इसलिए हमारा जीवन बिगड़ गया। तो परमात्मा आकर के हमें कहते हैं कि स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो, स्वयं के प्रति फोकस रहो, तो हम अपने हर एक्शन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो जीवन में दो भूलें सबसे बड़ी होती है, दूसरों को देखना और दूसरों को फॉलो करना। अब एक दृश्य में मान लो चार एक्टर है, एक का रोल है कि भाई तुमको हंसना है, दूसरे का रोल है कि ये हंसे तब तुमको रोना है, तीसरे का रोल है कि तुमको चुप रहना है। हर एक एक्टर अपना रोल प्ले करेगा ना। अगर एक रोता है उसको देखकर दूसरा भी रोए तीसरा भी रोए तो ड्रामा चलेगा। हाँ भाई, आपको अपना पार्ट प्ले करना है। हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को ही फॉलो कर लेते कि इसने गुस्सा किया ना, इसलिए मैंने गुस्सा किया, इसने ऐसा बोला ना, इसलिए मैंने ऐसे बोला, वरना मैं थोड़ी बोलती कोई उससे बढ़ के है कि उसने दो बोला ना, मैं चार बोलूंगी, इसलिए ये जीवन ड्रामा संसार बिगड़ गया। और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि काहे को ऐसी दुनिया बनाई, भगवान ने ऐसी नहीं बनाई, भगवान ने तो बहुत अच्छी सतयुगी दुनिया ही बनाई थी, पर हम अपने आप को भूल गए, दूसरों को देखने लगे, फॉलो करने लगे, इसलिए ये बिगड़ गया। इसलिए क्यों ये ऐसा करता है, ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक आत्मा अपने संस्कार अनुसार पार्ट प्ले कर रहे, उनका रोल ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसे कर्म करना है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपने संस्कार है। प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद पर ध्यान देना है कि मुझे अपना रोल कैसे प्ले करना है ना? और लास्ट बात कि अब चूंकि ड्रामा का ये साइकिल पूरा हो रहा है, इस वर्ल्ड ड्रामा में जितने भी एक्टर्स हैं, मैक्सिमम परम धाम से आ चुके हैं, इसलिए विश्व की जनसंख्या बढ़ती जाती है। कितने साधन अपना रहे हैं फिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो एक्टर्स हैं उनको स्टेज पर पार्ट प्ले करने के लिए आना ही है। जब मैक्सिमम एक्टर्स स्टेज पर आ चुके हैं और अब ये ड्रामा पूरा होना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये अंतिम चरण में ड्रामा पहुंच चुका है, अब वापस घर जाना है। हमने इस दुनिया में आकर शरीर धारण किया, संबंध बनाए, परिवार बनाया, संसार बनाया, इसलिए हम कहते हैं कि अकेले आए हैं और अकेले जाता है। वापस जाना है, पर वापस जाने की दो शर्त है, अकेले आए हैं, अकेले जाना। जो यहां से लिया वो यहां ही छोड़ना है, शरीर सहित सब कुछ। इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है, आप जो देंगे वो ही पाएंगे। सुख देंगे सुख पाएंगे, दुख देंगे दुख पाएंगे। हमने यहां से लिया, यहां ही छोड़ के जाए। पर दूसरी शर्त इंपॉर्टेंट है, पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। विकारी संस्कार कर्म विचार के साथ आत्मा वापस परमधाम नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा आए हैं, वो कहते हैं ज्ञान और योग बल से पवित्र बनो, वरना कर्मों का भोगना भोग के सजा खाकर भी पावन तो बनना है, क्योंकि अब वापस जाना है। तो हम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर है। हर एक्टर का एम क्या होता है? हीरो एक्टर बनना। कोई एक्टर नहीं चाहेगा कि मैं साधारण बन के रहूं, हर एक का प्रयास होता है हीरो बनूं। तो हमें भी इस वर्ल्ड ड्रामा में कैसा एक्टर बनना चाहिए? हीरो एक्टर, विलन नहीं बनना है, साइड एक्टर नहीं बनना है, हमें हीरो एक्टर माना श्रेष्ठ रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने से छूटने की बात नहीं कर, है ना। जब व्यक्ति को अच्छा एक्शन करना नहीं आएगा तो वो क्या सोचेगा, भाई इससे तो ड्रामा से मैं निकल जाऊं, मेरे को बराबर एक्शन करना नहीं आता है। पर जिनको अच्छा आता है वो तो क्या चाहेगा? हीरो बनो। तो जब हमें कर्म अच्छे करने नहीं आते हैं और उसके फलस्वरूप दुख और अशांति जीवन में भोगते हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे तो, इस ड्रामा से, जन्म मरण के चक्र से निकल जाए तो अच्छा है, मुक्ति में जाके बैठ जाए। सब काम छोड़ के कोई व्यक्ति बैठ जाए वो अच्छा है क्या? आप उसको क्या समझाएंगे? भाई उठो, हिम्मत रखो, आपने इतना पढ़ा लिखा है, फिर से मेहनत करो, अच्छा करके दिखाओ। आप किसी को ऐसी सलाह देंगे क्या कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कोने में? नहीं ना। तो परमात्मा भी कहते हैं कि ड्रामा से सदा के लिए निकल जाएं और परम धाम में जीरो होके मुक्ति में बैठ जाएं, नहीं। वो कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करना सीखो और वर्ल्ड ड्रामा में हीरो एक्टर बनो। ओम शांति।